السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج بھی. ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں، اسٹوڈیو میں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ شرکا بھی موجود ہیں جو کہ جاوید صاحب سے سوالات کریں گے. بلکہ میں اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں انہی سے سوالات لینا چاہوں گا. سب سے پہلے سر، میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. جاوید صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
ہم نے بھی قرارداد مقاصد میں ایک ریزولو طے کر لیا کہ سارا جو پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنے گا، اور اس پہ بھی ایک نیشنل ریزولو تھا. اس پہ پہلے قرارداد مقاصد ہوا، پھر 1973 کے آئین میں اس کو پریمبل میں شامل کیا گیا. تو جب ہم ایک ریزولو کر کے، ایک کوشچن پاک کر کے آگے چل چکے ہیں، اب اسی کے پیرافرنیلیا میں ہمیں سب کچھ ڈیولپ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ اسی سوال کو آج پھر کھول لیتے ہیں. سو اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟
دیکھیے، ایک کچھ چیزیں جو آپ نے طے کر لی ہیں وہ طے کر لی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی چیزیں طے کرنے کے نتیجے میں قوموں کے اندر کسی چیز کا احیاء ہو جاتا ہے؟ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ایک عام آدمی کی سطح پر، یا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ریاست کے ذمہ دار آدمی کی سطح کے اوپر، خواہ وہ سیاست دان ہوں، خواہ وہ مقتدرہ کے لوگ ہوں، خواہ وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کا علم معدوم ہے، موجود نہیں ہے؟
بالکل صحیح.
اور جس علم کی میراث میں ہم کھڑے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک فقہی روایت ہے. میں عرض کر چکا کہ اس کی ریلیونس موجودہ زمانے کے ساتھ قائم نہیں رہی، موجود ہی نہیں رہی. تو آپ اپنے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کے بغیر اس کو ایک جدید ریاست سے کیسے متعلق کریں گے؟ میں تو خیر اس کا بھی کوئی خاص حامی نہیں ہوں کہ یہ طے کرنے کی ضرورت تھی. اصل میں وہ عمل مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے تھا جس کی ابتدا علامہ اقبال نے کی تھی. یعنی ریکنسٹرکشن کو نہ صرف یہ کہ اپنا موٹو بنایا جاتا، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف اور ادراک کر کے ہماری تعلیم میں، ہماری تحقیق میں، ہماری اکیڈمیز میں، ہمارے سیاسی مباحث میں یہ تصور عام کیا جاتا کہ ہمیں اصل دین کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ کتنا ہوا؟
لیکن غامدی صاحب، پرابلم یہی ہے، اور ہم پھر اس کیچ 22 سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہے یہ ایک اوپن ڈائیلاگ کے بغیر نہیں ہوگی. اوپن ڈائیلاگ جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کہیں بلاسفیمی کی لائن کو کراس تو نہیں کر رہے. جب آپ فقہی مسائل کو شروع کریں گے اور آپ یہ کہیں گے، کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. بہت سارے لوگ جو دین کا نیریٹو عام آدمی کے لیے بنا رہے ہیں یا دے رہے ہیں ہر روز یا ہر جمعے کو یا ہر ممبر سے، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے آپ کی زندگی، ذاتی زندگی میں بھی بہت سارے مسائل پیدا کیے جس کی وجہ سے آپ کھل کے اس طرح سے جو اس معاشرے میں رہ کے جو آپ کو کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو ایک عام آدمی اس چیلنج کو کیسے ٹیک اپ کرے کہ وہ یہ بحث اور یہ ریکنسٹرکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن ہی اس کا پرابلی الٹیمیٹ ہے نتیجہ، لیکن یہ شروع کیسے ہو؟ نہ میڈیا کسی بات کو لینا چاہتا ہے، میڈیا خود جو کہ بڑا پاورفل پلیئر ہے وہ کسی کنٹروورشل بات کو، اس قسم کی بحث کو پیش کرنے کے لیے بھی سے بھی گھبراتا ہے، کوئی اخبار بھی گھبراتا ہے، کیونکہ سارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر وہ ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی کنٹروورشل بات کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے شروع ہوگا؟
کیسے شروع ہوگا اس کے بارے میں بتایا نا کہ
اسی طرح جیسے میں نے شروع کیا. اس لیے کہ اگر آپ کو یہ اپنے اوپر سے یہ بار اتارنا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ پہلے قدم پر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی صلیب اپنے کندھے پر خود اٹھا لیں گے.
بالکل.
دنیا کی تاریخ میں جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے ایسے ہی کیا. اگر وہ دیکھتے رہتے کہ کون ہماری بات مانے گا اور کون نہیں مانے گا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو کچھ بھی نہ ہو پاتا. دنیا میں جو بڑے بڑے تغیرات آئے ہیں، آپ یورپ میں احیاء علوم کی جب تحریک چلی ہے، ذرا اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کیجئے، وہ سارے کے سارے لوگ آج یورپ کی نشت ثانیہ کے نقیب ہیں، وہ سب کے سب اپنے زمانے میں آخری درجے کے کنٹروورشل تھے. تو اس وجہ سے یہ جرت کرنی پڑے گی، اور یہ عام آدمی نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو اللہ نے کوئی خاص صلاحیت دی ہے. آپ دیکھیں، آپ کے یہاں اساتذہ ہیں، آپ کے یہاں وکلاء ہیں، آپ کے یہاں دانشور ہیں، آپ کے یہاں صحافی ہیں، آپ کے یہاں کالم نگار ہیں، آپ کے یہاں بیوروکریسی کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، असल में ये लोग हैं जो आगे कदम बढ़ाते हैं और अपनी अपनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लेके कोई राय कायम करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप एक ईंट उठाएं और दूसरों को मार दें, इसके लिए शाइस्ता और महजब मुकालमे के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। मैं एक तनहा आवाज हूं, मुझे इससे भी कोई घबराहट नहीं होती, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। और फिर ये देखिए कि इस माशरे में जिसमें कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुझको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि लाखों लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग उससे मुतासर हो रहे हैं, बेशुमार लोगों के जहनों और फिक्र में उससे तब्दीलियां आ रही हैं। तो किसी काम के बारे में आप ये क्यों ख्याल करते हैं कि वो पहले दिन किया जाए तो उसके आखिरी नताइज निकल आएंगे? यहीं से इब्तिदा होगी और मैं इसी की जानिब तवज्जो दिला रहा हूं कि बजाय इसके कि हम जजा व फजा करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए, हर आदमी उसमें अपना किरदार अदा करे। और किरदार कौन अदा करते हैं? वही जिनको अल्लाह ताला शऊर की एक सतह पर फायज करता है। आमतुन नास तो हमेशा जब मामला तय हो जाते हैं उसके बाद पैरवी के लिए निकला करते हैं, उनसे पहले मरहले में तवक्कुआत भी।
क्या क्वेश्चन है सर? जी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा टॉपिक को। ज़कात के बारे में मेरा क्वेश्चन था। आपका जो नुक्ता नजर ज़कात के बारे में है कि ज़कात इन एसेंस द कलेक्शन ऑफ ज़कात इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। अच्छा, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की सतह पे जो हम टैक्सेस जो लागू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, क्या हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ज़कात कह सकते हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि बहुत सी जगहों पे ये देखने में मुझे आता है कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और प्राइवेटली भी टैक्स देने से लोग इज्तनाब करते हैं। ये जरूर कहते हैं जी हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की करे, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क हो जाए, लेकिन ज़कात दे देंगे, टैक्स नहीं देंगे, और साथ ये कहेंगे कि ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप इन दोनों नुकात पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें।
देखिए, पहले तो इस बुनियादी बात को समझ लीजिए कि ये टैक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। यानी इंसान की हवा और पानी की तरह जरूरत रियासत की। इंसान का मामला यह है कि उसको अल्लाह ताला ने इरादा और इख्तियार देकर पैदा किया है। जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो लोगों की जान मार आबरू के लिए खतरात पैदा हो जाते हैं। चुनाचे इंसान ने यह फैसला किया कि वह अपने अंदर एक नज़्म हुकूमत या एक नज़्म इज्तमाई पैदा करे। नज़्म इज्तमाई जब भी पैदा किया जाएगा उसको चलाने के लिए अम्बाल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके लिए अपील कर सकते हैं लोगों को, लेकिन आम तौर पर उस अपील का जवाब आपके हस्ब मंशा नहीं मिलता। चुनाचे इंसानी तजुर्बात ने यह फैसला किया कि रियासत के लिए कोई इख्तियार होना चाहिए कि वह आपके कमाए हुए माल का कोई हिस्सा अपने लिए ले। यही टैक्सेशन। आपके इलम में है कि इससे पहले दुनिया की तारीख में ये बादशाह की मर्जी पर मुनसर होता था, वो जितना चाहे ले ले, उसके कारिंदे आते थे, जो फैसला कर दिया गया नाफिज हो जाता था। अमेरिका में तहरीक चली नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी अब गोया जमहूरी दौर आ गया, कौमी रियासतें बन गई। जमहूरी अदवार में ये फैसला किया गया कि पार्लियामेंट ये काम करेगी। मैं आपकी खिदमत में बरसों से अर्ज कर रहा हूँ कि ये चूंकि सबसे बड़ी नज़ा है जो फर्द के और इज्तमाही इदारों के दरमियान पैदा हो गई है। मैं पैसे कमाता हूँ, माल मेरा है, मैंने जद्दोजहद की। आप कहते हैं कि इज्तमाही मफाद के लिए इतना रुपया, आप कहें कि इज्तमाही मफाद के लिए दो, मेरी मर्जी है मैं दूं, मेरी मर्जी है मैं ना दूं, मेरी मर्जी है मैं इतना दूं, मेरी मर्जी है कि मैं उससे कम या ज्यादा दूं। जब आप मुतय्यन करके कहते हैं कि ये दो वरना हम तुमसे जबरन ले लेंगे, तो इससे एक निज़ा पैदा होती है, कश्मकश पैदा होती है। ये जो कश्मकश है इसी को अल्लाह ताला ने हल कर दिया और ये फैसला कर दिया कि अब इसका फैसला ना बादशाह किया करेंगे, ना कोई तबका करेगा, ना कोई पार्लियामेंट करेगी, इसका फैसला मैं कर रहा हूँ, मैं कायनात का खालिक हूँ। ज़कात इसी का नाम है। इसमें दर हकीकत खुदाई फैसला कर दिया गया है कि रियासत को अपने मामलात चलाने के लिए ये कुछ है जो लेने का हक है, इसके सिवा उसको कोई चीज़ लेने का हक नहीं है। ये तो है असल मसला। आलमी सतह पर भी हम क्या इसका तारुफ इस तरह करा सकें, क्या ये बता सकें हैं, क्या इस पर उठने वाले सवालात का जवाब दे सकें हैं, वो एक बिल्कुल अलग बहस है।
तो मैं आपकी बात से जो बात समझाऊं कि एक इस्लामी रियासत में जो टैक्स का वर्ड यूज करें या ज़कात का वर्ड यूज करें, दोनों सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ज़कात की नौइयत अलबत्ता ये है कि वह अपनी असल के लिहाज से इबादत है क्योंकि खुदा की तरफ से आई है। इस वजह से रियासत हो या ना हो मुझे वह हक अदा करना है, लेकिन जब रियासत वजूद में आएगी तो वो ये हक रखती है कि मुझसे बिलजबर वो ले ले। चुनाचे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने ऐसे किया। इब्न खुल्दून अपने मुकदमे में एक इस्लामी रियासत और एक गैर इस्लामी रियासत का फर्क यही बयान करता है कि गैर इस्लामी रियासतें टैक्स लगाती हैं और इस्लामी रियासतें ज़कात आयद करती हैं। फर्क यही बयान किया है। तो इस वजह से ये अल्लाह का कायम करदा, अल्लाह का मुकर्रर करदा टैक्स है। दो हैसियतें हैं, अपनी हकीकत के एतबार से ये इबादत है, अपने अमली इजहार के लिहाज से ये हुकूमत का हक है जो आपको उसको देना होता है। जब वो मांग दिया तो आप इनकार नहीं कर सकते, ये है असल मसला। अब जाहिर है कि इसका शऊर नहीं है, ये बात उस तरह वाजे नहीं है, तो हुकूमतें टैक्स लगाती हैं। वो हमारी हुकूमत भी लगाती है, वो अमेरिका भी लगाता है, बरतानिया भी लगाता है, एक रवायत है जो चली आ रही है। तो इस वजह से मैंने बरसों पहले से यह राय दे दी थी कि जो लोग अपनी ज़कात का हिसाब करके उसको टैक्स में से मिनहा करना चाहें वो कर सकते हैं, उनकी तरफ से वो अदा हो जाए।
ये तो हमने इस्लामी रियासत की बात की, जो पाकिस्तान से बाहर मुसलमान रहते हैं वहाँ पे जो टैक्स के रेट्स हैं वो 30-40% तक है, क्या ये सहूलत उन लोगों के लिए भी यकसा है जो आपने बयान की है?
हर हुकूमत को कायल करना पड़ेगा, सहूलत तो सबके लिए है। यानी देखिए ना, बाहर की हुकूमतें हैं तो उनको भी ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है कि इस मामले का फैसला इस कायनात के परवरदिगार ने कर दिया है और ये पैगाम हमको पहुंचाना चाहिए। लेकिन उनको भी वो रियासतें वही सहूलतें दे रही हैं, बल्कि उससे बढ़कर दे रही हैं जो हमारी रियासत देती है। तो इसलिए सबके लिए एक ही कायदा है, वो भी अपनी जकात को उसमें मिना कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।
और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको कहा था कि इसका मतलब है कि जो लोग हमारे मुआशरे में टैक्स अवेजन करते हैं वो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं,
इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए बात यह है कि अल्लाह का एक हक है, उतना तो उनको लाजमनी देना है, इसके सिवा वो एक रियासत के शहरी हैं, उन्होंने एक माहिदा किया हुआ है। तो हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि आप किसी रियासत की शहरियत भी लें, उसके अंदर एक माहिदे में बंधे हुए हो, फिर उसकी खिलाफ वर्जी भी करें। कुरान मजीद की जो आखिरी सूरा है जिसको अहद मीसाक की सूरा कहना चाहिए, सूरा माहिदा, आपके मालूम है कि वो शुरू यहाँ से होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, ईमान वालों सबसे बढ़कर तुम्हें अहद माहिदे की पाबंदी करनी है। आप जब यहाँ रहते हैं या आप अमरीका में जाके कदम रखते हैं तो आप असल में एक माहिदे में बंधे हुए होते हैं। जब आप माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप दीनी लिहाज से भी एक गुनाह का इर्तकाब करते हैं, बल्कि बाज हालात में ये कबीरा गुनाह बन जाता है। तो इस काम तो कभी नहीं करना चाहिए, अलबत्ता एक कानून गलत हो सकता है, उसको तब्दील कराने की जद्दोजहद करनी चाहिए।
एक लॉजिक जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी हम टैक्स इस वजह से नहीं देंगे कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर करप्शन और बहुत सारी लीकेजेज है, तो क्या ये दलील जो है आपके ख्याल में ये काबिल कबूल है?
ये जो ये लोग भी इस तरह की बातें करते हैं उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि वो खड़े होकर कहें कि मैं नहीं दे रहा, वो इसके लिए झूठ बोलते हैं। अगर किसी ने ये काम करना है तो उसे मैदान में खड़ा होना चाहिए, अजीमत और इस्तकामत के साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि मैं नहीं देता इसलिए कि तुम गलत लेते हो, और फिर उसके नतायज भुगतने चाहिए। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए माफ कीजिएगा, मेरे दीन में झूठ की कोई गुंजाइश।
जावेद साहब, एक क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा हटकर, साल जो है वो इलेक्शन का साल है, उसके हवाले से एक क्वेश्चन आया है। उन्होंने पहले एक रिवायत का हवाला दिया है कि एक कोई रिवायत है जिसमें ये कहा गया है कि जब फितने का दौर होगा तो खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और बैठ जाने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर होगा। उसके तनाजुर में वो ये कह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि वोट एक कौमी अमानत है और उसे हमें ज़ाहिर अदा करना चाहिए, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि मेरे हलके में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, खा किसी भी जमात के हों, वो कोई भी इस काबिल नहीं है कि उन्हें वोट दिया जाए और वो फितने का दौर ही है, तो मैं वोट का इस्तेमाल ना करूं, मैं घर बैठा रहूं, तो ये ठीक होगा या मुझे वोट लाजमी किसी ना किसी को देना ही है?
पहले तो वो रवायत समझ लीजिए, उसमें फितने के दौर से मुराद क्या है? फितने के दौर का मतलब ये होता है कि जब खाना जंगी शुरू हो जाए, अनार्की पैदा हो जाए, रियासत का नज्म खत्म हो जाए, मुख्तलिफ गिरोह उठ खड़े हों, हर एक इकतदार की कश्मकश में तलवार उठा ले, ये सूरत हाल है जिसके बारे में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई। तारीखी तौर पर आपको मालूम है कि आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई थी, यानी जगह जगह ऐसे गिरोह उठ खड़े हुए थे जो एक दूसरे की गर्दन काटते थे, जिसको वो रिवायत में बयान किया है ना कि यज़रब रिकाबाबाज, वो सूरत हाल पैदा हो गई। तो फितने के दौर से मुराद ये
जी ठीक है,
इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है।
सही,
हम एक पुरअमन मुल्क में रह रहे हैं, दुनिया भर में जितना अमन इस वक्त है इंसानी तारीख में कमतर हुआ है। तो इसमें हमें अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए, वो फ़राइज़ जो हम पर फ़र्द की हैसियत से आयद होते हैं, वो जो हम पर ख़ानदान के किसी जिम्मेदार की हैसियत से आयद होते हैं, वो जो हम पर रियासत के हवाले से आयद होते हैं, वो सब अदा करने चाहिए।
ठीक,
ये जो दूसरा पहलू है इसका कि कोई आदमी भी मेयार पर पूरा नहीं उतरता, तो सियासी मामलात में आदमी को किसी आइडियलिज्म में मुबतला नहीं होना चाहिए। इसमें आप ज़मीनी हकायक के मुताबिक फैसले करते हैं,
ठीक है,
यानी निस्बतन बेहतर के हक में फैसला करते हैं, और इसी उसूल पर बाकी जिंदगी भी गुजर रही है।
गोया वोट लाजमी कास्ट करना चाहिए,
जरूर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है उसके नतीजे में, यानी लोगों के पास حکومت آ جاتی ہے, حکومت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں, بڑی طاقت ہوتی ہے, تو اس میں آپ نسبتاً بہتر کے اصول پر اپنا کردار ادا کریں.
جاوید صاحب, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نسبتاً بہتر ہمیں لگتا ہے نا, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید 5000 ووٹ بھی نہیں لے پائے گا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نسبتاً بہتر تو ہے, لیکن میرے ایک ووٹ نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسے ہارنا ہی ہے, تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا ووٹ دینے کے لیے.
دیکھیے, اس میں بحثیت مجموعی فیصلہ کرنا چاہیے امیدوار کے بجائے جماعتوں کی بنیاد پر.
اچھا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس میں بھی بہت سی خرابیاں اگر آتی ہیں. تو یہ فیصلے کی بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ کون سی جماعت بحثیت مجموعی بہتر ہے, کس کو ہم اپنے اعتماد کا مستحق سمجھتے ہیں. وہ آپ کے خیال میں ایک ہو سکتی ہے, کسی دوسرے خیال میں دوسری ہو سکتی ہے, ان کے مابین فیصلہ کیجیے, اس سے سیاسی استحکام پیدا ہوگا. اگر آپ افراد کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو ایک قومی انتشار وجود میں آ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو اسی بنیاد پر ڈسکریج کیا جاتا ہے, ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, وہ بعد میں پارٹیوں کے اندر شامل بھی ہو جاتے ہیں.
جی.
تاہم اس سب کچھ کے باوجود اگر آدمی کا اطمینان نہیں ہوا تو ایک گنجائش دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, نہ دے, لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کوئی مثالی صورتحال دنیا میں تلاش کرنے کی بجائے عملی زندگی کے اندر کھڑے ہوں اور جس جماعت یا جس تنظیم کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے حق میں اپنی رائے دیں.
میرا جو سوال ہے نا وہ انٹرسٹ کے حوالے سے ہے. اسلام میں جو انٹرسٹ کا جو ماڈل اور پورا کانسیپٹ ہے نا, وہ کس فنڈامنٹلز کے اوپر ہے, اس کی بیسز کیا ہے, وہ کس پلرز کے اوپر وہ پوری عمارت ہماری انٹرسٹ کی جو ہے نا کھڑی ہے. دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے, ایک چیز ہے انٹرسٹ, دوسری ہے ہارڈ شپ اینڈ ایکسپلائٹیشن. فار ایگزامپل اس میں ایک چھوٹی سی مثال ایڈ کروں گا, اگر میں آج لاہور میں بیٹھا ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میرے فار ایگزامپل پیسے اسلام آباد سے ہی آ رہے ہیں اور وہ ایک دو دن کی ٹریولنگ ہے اس میں, تو مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے, تو اگر میں کسی اپنے قریبی دوست سے وہ فار ایگزامپل 1000 روپیز میں لے لیتا ہوں اور جیسے ہی مجھے دو دن بعد پیسے آتے ہیں اور میں اس کو 2000 واپس کر دیتا ہوں, تو اس تناظر میں وہاں پہ میری ایکسپلائٹیشن یا جو انٹرسٹ کی جو عمارت اور پرنسپل ہے اسلام میں اس کی کیا اپلیکیشن ہوگی؟
یعنی انٹرسٹ کی بنیاد کیا ہے اور پھر یہ ٹائم ویلیو آف منی جو ہے, آپ
ٹائم ویلیو آف منی از سیپریٹ تھنگ, آئی ایم آسکنگ اباؤٹ ہارڈ شپ اینڈ ایکسپلائٹیشن آف سم ون.
ٹھیک,
اگر اس میں کسی کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے, ٹائم ویلیو آف منی از ڈفرینٹ.
پہلی بات تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ساری دنیا کے معاملات سود یا انٹرسٹ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں معیشت سے متعلق ایک بنیادی اصول بیان ہوا ہے اور وہ قرآن مجید ہی میں بیان ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی تم ایک دوسرے کا مال کسی باطل طریقے سے نہ کھاؤ. چنانچہ ہر وہ چیز جو ظلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, استحصال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. انٹرسٹ یا سود ان میں سے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے.
بالکل,
یعنی استحصال کی بعض ایسی صورتیں ہیں جو اس سے کہیں بڑی ہیں اور وہ موجود ہیں دنیا میں, ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انٹرسٹ کوئی پرنسپل نہیں ہے, اصول نہیں ہے, بلکہ ایک اصول کا اطلاق ہے. وہ اصول ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی ہمیں کوئی بھی ایسا طریقہ دوسرے کا مال کھانے کا اختیار نہیں کرنا چاہیے جو باطل پر مبنی ہو, جو ناحق پر مبنی ہو, جس کو انسانی فطرت قبول نہ کرتی ہو, جس سے انسانی عقل ابا کرتی ہو. وہ خواہ ملاوٹ ہے, وہ خواہ غبن ہے, وہ کسی کا مال لوٹنا ہے, وہ کسی کو دھوکہ دینا ہے, وہ فریب دینا ہے, وہ کسی اور طریقے سے استحصال کرنا ہے, وہ ظلم کے ساتھ کسی کا مال چھیننا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے دین میں ممنوع قرار دی گئی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کریں, یعنی کسی کو اس کی ضرورت کے لیے قرض دیں, خواہ وہ ضرورت کاروباری ہے یا ذاتی ضرورت ہے, ضرورت کے لیے قرض دیں, اس لیے کہ ظاہر ہے ضرورت مندی آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آتا ہے. اسلامی اخلاقیات میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ زائد موجود ہے تو آپ اپنے بھائی کی ویسے ہی مدد کر دیں, لیکن اگر آپ قرض کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی اصل رقم سے زائد مطالبہ نہ کریں. یہ قرض کی اخلاقیات ہے, اور اگر آپ زائد رقم کا مطالبہ کریں گے تو یہ ربا ہے یا سود ہے. سادہ تعریف ہے اس کی, قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ اس اصول کی اپلیکیشن کہ یہ بھی کسی کا مال باطل طریقے سے لینا ہے, ناجائز طریقے سے مال لینا ہے. تو اس وجہ سے صحیح تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو صورتحال یہ ہے, تو قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن کسی سے آپ قرض لیتے ہیں और अपने शौक से अपनी खुशी से बेहतर तरीके से वापस कर देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर ऊँट लिया था और वापस किया तो ये कहा कि भाई उससे बहुत बेहतर ऊँट वापस कर देना, अपनी खुशी से जायद दे देना ये रिबा नहीं है। मुतालबा करना और मुतालबे की बुनियाद पर किसी से तकाजा करना, इसको सूद कहा जाता है।
अच्छा, इसी कोई थोड़ी अगर एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सिर्फ एक्सचेंज के पर्पस के लिए ही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इलाके या गांव में रह रहा हूँ जहाँ पे सारे एक वेल्दी पर्संस की एक सोसाइटी है, ओवरऑल एवरीबॉडी इज वेरी वेरी वेल्दी, वहाँ पे किसी को किसी किस्म की हार्डशिप की सामना नहीं है, तो वहाँ पे अगर ये सिनेरियो सारा चल रहा है, अगर वो दे भी रहे हैं नवाज भी रहे हैं उसी के बदले में, तो फिर वहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे? मतलब मेरे पास इल्म है कि नहीं किसी का इस्तेहसाल करना, इस्लामी प्रिंसिपल्स हैं कि किसी की कर्ज से ज़्यादा आपने नहीं डिमांड करनी, तो फिर वहाँ उस सोसाइटी में मैं फिर कैसे मतलब कि इस चीज़ को देखूंगा?
अगर वाकई ऐसी कोई सोसाइटी मौजूद है जिसमें किसी को जरूरत ही नहीं है तो कर्ज लेने कौन आएगा आपके पास?
नहीं, वहाँ
कर्ज तो मांगा ही उस वक्त जाता है जब आपको कोई जाति या कारोबारी जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो हार्डशिप ही होती है। तो इस वजह से पहले या तो उस बुनियादी मुकदमे को खत्म कर दें, वरना जहां कहीं जरूरत होगी वहां कर्ज मांगा जाएगा। जब जरूरतमंद को आप कर्ज देंगे तो आपको मनफत का मुतालबा नहीं करना चाहिए।
इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जिस तरह इस्लामिक बैंकिंग में जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, अगर एक लीज की ट्रांजैक्शन है उससे मसलन इजारा की ट्रांजैक्शन रखती है जिसमें आप एक रेंट का एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद एक गिफ्ट का एग्रीमेंट होता है, सो प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस चेंज नहीं होता बट लीगल फॉर्म चेंज हो जाती है। और इस पर अगर एक आम बंदे की हैसियत से देखूँ तो ट्रांजैक्शन मेरे लिए चेंज नहीं हो रही, उसकी इकोनॉमिक सब्सटेंस वही है, तो क्या इसकी एग्जांपल वो ली जा सकती है? बनी इसराइल वाली जो एग्जांपल है, जब उनको जो हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया था वो जब तमाम कर ली, उन्होंने गड़े खोद लिए और वहाँ से उनको संडे को निकाल लिए जाते थे। तो पॉइंट इस, क्या सिर्फ हुज्जत तमाम करके ये ट्रांजैक्शन कोशर या हलाल हो जाती है या नहीं होती? ये
देखिए, मैं तो कभी इसका कायल नहीं रहा, मेरे नज़दीक ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उतनी सख्त बात तो नहीं कहता जो आपने फरमाई है, लेकिन हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए कि वह हीलाबाजी करे। ना सिर्फ ये कि आपके अपने ज़मीर को नुकसान पहुंचता है, आप इस्लाम का भी गलत तारुफ कराते हैं। तो सीधा मामला करना चाहिए, जो चीज़ें आप खरीदते हैं, बैंक आपको मकान खरीद के दे देता है, वो आपको गाड़ी खरीद के दे देता है, ये मेरे नज़दीक सूद का मामला ही नहीं है, ये हायर परचेज एग्रीमेंट है, और हायर परचेज एग्रीमेंट बिल्कुल जायज़। इसमें जो जायद लिया जाता है वो उस शय का किराया है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सूद का ताल्लुक कर्ज की सूरत में होता है, किराए की सूरत में नहीं होता, या सादा लफ्ज़ में बयान कीजिए तो वो यूजेबल मामलात में नहीं होता, वो कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है, चीज़ें अपने आप को फना कर देती हैं। तो इसको सीधा और सादा करना चाहिए। जो रुपया इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है, मेरे नज़दीक क्योंकि बैंक ज़्यादातर कारोबारों को देते हैं, मुझे आपको तो नहीं देते, समय इसके कि आप क्रेडिट कार्ड के मामले को ज़ेरे बहस ले आए, वो ज़्यादातर कारोबारों में देते हैं, तो उनको असल में प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग का तरीका इख्तियार करना चाहिए। ये बिल्कुल काबिल अमल है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हिलाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके कुछ बुनियादी उसूल अपने बाद आर्टिकल्स में बयान कर दिए, उनको आप तफसील से पढ़ लीजिए।
जावेद साहब, आपने ये हायर परचेज वाली जो बात की, गाड़ी लेता हूँ मैं या घर लेता हूँ, तो वो हायर परचेज आप फरमा रहे कि ये सूद नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट जो बन रहा है उस डॉक्यूमेंट में हायर परचेज एग्रीमेंट का इस तरह से जिक्र नहीं है, वो बैंक उसको जो है वो इंटरेस्ट के तौर पर ही डॉक्यूमेंट कर रहा है या लिख रहा है, तो तब भी आपके नजदीक वो सूद नहीं है, या उसमें हायर परचेज एग्रीमेंट लिखा हुआ होना जरूरी है?
अल्लाह ताला के हाँ आप हकायक पर जवाबदेह होते हैं, अल्फाज पर नहीं होते।
ठीक,
इस वजह से हकीकत ठीक है तो अल्लाह के यहाँ मुआवजा नहीं होगा। दुनिया में तो मामला अल्फाज ही पर होते हैं,
सही,
लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हकायक पर मामला होते हैं। बैंकों को भी चाहिए कि वो इस मामले को दुरुस्त कर लें।
ठीक,
मिसाल के तौर पर मैं जहाँ रहता हूँ मलेशिया में, वहाँ ऐसे तमाम जितने भी माहदे हैं वो हायर परचेज एग्रीमेंट ही होते हैं, उन पर यही लिखा हुआ होता है,
लिखा होता है।
तो इसको यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि सूद कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है, वो यूजेबल चीज़ों में नहीं होता।
अच्छा, एक क्वेश्चन जी ईमेल पर है मेरे पास, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका सवाल जो है वो एक अभी हालिया जो वाक़ा है उसके तनाजुर में है। ये फरमा रहे हैं कि जिन ममालिक में मुसलमान अकलियत में हैं, वहाँ पर अगर गैर मुस्लिम लोगों को अजान की आवाज़ से कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों का रवैया क्या होना चाहिए?
आप जिस मुल्क में रहते हैं आपको उसके कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। अजान आपने देनी है तो आप मस्जिद के अंदर दे सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि आपके इस हक को कौमी सतह पर या रियासत की सतह पर तस्लीम कर लिया जाए, यानी लोगों को ये आमादा किया जाए कि ये कुछ भी नहीं है, हम अपने परवरदिगार की इबादत की तरफ बुलाते हैं और इसके लिए हम ये चंद अल्फाज बुलंद करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर बात समझाई जाएगी तो आसानी के साथ कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इस तरह के तमाम मामलात को हुकूक का मसला बना लेते हैं और फिर उसको सियासी सूरत दे देते हैं। कोई बात अगर सामने ऐसी आई है जो आपके तसव्वुरात के खिलाफ है तो पहले दूसरे को इब्लाग करके समझाइए आप क्या करना चाहते हैं। ताहम अगर कोई कौम कोई गिरोह ऐसा नहीं करता और आपके इस हक को मानने के लिए तैयार नहीं है और बिलजबर आपको इससे रोका जाता है तो फिर आपको कानून की पाबंदी करनी चाहिए, यही हमारे दीन ने हमें।
ठीक सर
जी, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई कि ये एक असलन कौमी हुकूमत थी, एक कौमी रियासत हमने बनाई, लेकिन हमने इसे नज़रियाती तौर पर सामने लाए और नज़रिए के तौर पर हमने इसे माना और कबूल किया। नज़रियाती हुकूमत और कौमी हुकूमत, इसमें तजाद क्यों वाक़या हुआ और क्या कोई ऐसी शक्ल है जिसमें कौमी हुकूमत भी ये रहे और नज़रियाती हुकूमत भी रहे? क्या इस ये एक दायमी तजाद है, इसका कोई हल है?
इसका बिल्कुल हल है और ये दो लफ्ज़ों में है, यानी रियासत और हुकूमत को अलग अलग देखिए। ये कौमी रियासत है, कौमी रियासत के तौर पर बनाई गई थी और इसी हैसियत से कायदे आज़म ने इसकी बुनियाद रखी थी। इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। जब तक हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे हम तजादात में उबतला रहेंगे। इसमें हुकूमत क्या करनी है जिनको अक्सरियत हासिल होगी, यहाँ मुसलमानों को अक्सरियत हासिल है, वो अपनी हुकूमत को जिस चाहे नज़रिए का मुबल्लिग बनाए। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें तो इसी उसूल पर कायम होती हैं कि वह अपना मंशूर पेश करती हैं और मंशूर एक नज़रिया होता है, यानी उसमें बताया जाता है कि हम कौम में क्या करेंगे, क्या कवानीन बनाएंगे, कौम के साथ क्या मामला करेंगे, क्या चीज़ें उनको देंगे। तो हुकूमतें उठें और हुकूमतें कहाँ से वजूद में आती हैं? सियासी जमातों से। सियासी जमातें उठें और वो अपने मंशूर में बताएं कि उनका नज़रिया क्या है। वो नज़रियाती ही होने चाहिए। अगर सियासी जमातें कोई नज़रिया नहीं रखती तो फिर वो असल में इक्तदार की कश्मकश में शरीक गिरोह है, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। हर सियासी जमात को ये चाहिए, मैं सिर्फ मजहबी जमातों की बात नहीं कर रहा, हर सियासी जमात को ये चाहिए कि वो अपने मंशूर में अपने नज़रिए की वजाहत करें। वो कौम को मुल्क को क्या देंगे, लोगों को किस तरह तालीम देंगे, लोगों के मामलात किस तरह तय करेंगे, कानून साजी की क्या बुनियादें होंगी, टैक्सेशन के क्या उसूल होंगे, ये उनको बयान करना चाहिए। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप इन दो चीज़ों को अलग कर लें, यानी रियासत को आप नज़रियाती बनाने की कोशिश ना करें और सियासी जमातों और हुकूमत को गैर नज़रियाती बनाने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। रियासत तो एक कौमी रियासत की हैसियत से एक हकीकत वाकया के तौर पर मौजूद है, लेकिन हुकूमतें कभी पीपल्स पार्टी की होगी, कभी मुस्लिम लीग की होगी, कभी तहरीक इंसाफ की होगी, कभी फलां की होगी, कभी फलां की होगी। हर पार्टी को हक हासिल है कि कौम अगर अक्सरियत के साथ उसको मुंतखब करती है तो अपने नज़रिए के मुताबिक मुल्क का निज़ाम चलाए, हर एक को हक हासिल है।
सूद से रिलेटेड सवाल था, जो जनरली अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब एसेट बेस्ड ट्रांजेक्शन हो जाती है, जिसका आपने हायर परचेज का एग्जाम्पल भी दी, वो तो ठीक है, बट हम आज हम जिस डिनोमिनेशन में ट्रेड कर रहे हैं या डील कर रहे हैं वो खुद भी एसेट बेस्ड नहीं है। जो हमारा करेंसी नोट है और जो करेंसी है ये एक प्रोमिसरी नोट है विच इज़ नॉट रियली बैक बाय एसेट। सो इस तनाजुर में अगर हम सूद की और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट और सूद को जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या वो उसकी फंडामेंटल्स किस तरह से चेंज होते हैं? बिकॉज ये
इन्फ्लेशन के मामलात कर्ज में एडजस्ट किए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये आप इन्फरादी सतह पर भी तय कर सकते हैं या आप कौमी सतह पर भी तय कर सकते हैं। मैं तो अरसे से ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि आप किसी को कर्ज देते हैं तो करेंसी की हकीकी वैल्यू के लिहाज से माहिदा कर लीजिए और वो इसी लिहाज से आपको वापस कर देगा, क्योंकि ये हमें मालूम है कि बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों की कीमतों में तब्दीलियाँ हो रही हैं। अच्छा, रियासत की सतह पर भी आप ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ खिलाफ शरीयत नहीं है। हम जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी तब्दीलियाँ किस तरीके से आ रही हैं। कदीम ज़माने में बाज़ औक़ात 400 साल में कीमतें एक ही जगह खड़ी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो इस हकीकत वाक़या के मुताबिक अपने मामलात को भी दुरुस्त कर लेना चाहिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं। मैं लिख कर ये बात कर चुका हूँ और मेरे नज़दीक ये इन्फिरादी मामलात में भी बिल्कुल जायज़ है, ये इज्तिमाई मामलात में भी बिल्कुल जायज़।
सर, इसमें रेफरेंस पे हम गोल्ड को बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि हम कदर तय कर लें तो गोल्ड को रेफरेंस
कई चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए, इसका ताल्लुक भी हालात से है। अगर आपके ख्याल में सोने को आज भी ये हैसियत हासिल है तो उसे बना दीजिए,
ठीक।
एक ज़माने में पेट्रोलियम की मसनूआत को ये हैसियत हासिल हो गई थी, आप उनको बना सकते हैं। अच्छा, एक तरीका जो है माहिरीन मईशत तजवीज़ करते हैं वो ये कि आप एक माशी बास्केट बना देते हैं, और उसकी बुनियाद पर इन्फ्लेशन को तय कर देते हैं। जो भी कायदा बना लें उसके मुताबिक आप तय करें और उससे अपने तमाम कर्जों को वाबस्ता कर दें, इसमें इस्लाम को, मजहब को मेरे नज़दीक कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का बुनियादी वजह है वो आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी की वजह से पैदा होती है। अगर आपकी ट्रेडिंग ही रियल एसेट्स में हो रही है, सेटलमेंट एटलीस्ट रियल एसेट्स में हो रही है, तो फिर ये इन्फ्लेशन का मामला जो है ये गैर इररिलेवेंट हो जाता है।
खुदा करे ऐसा हो जाए, जब तक नहीं होता उस वक्त तक तो जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ही राय देनी पड़ेगी। यानी ये बात कि दुनिया का निज़ाम तब्दील हो जाए, उसके अंदर हुकूमतें जिस तरह से मामलात करती हैं उनमें तब्दीली आ जाए, दुनिया के मजमूई माशी नज़म को किसी और उसूल पर उस्तवार कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, आप भी जद्दोजहद कीजिए, हम भी करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता
तब उस तक हम सूरत हाल यही। सर आपका सवाल।
मैं सर डॉक्टर हूँ, इम्यो अस्पताल में काम कर रहा हूँ, तो मेरी अगर आप वैसे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, इम्यो में चले जाएँ, किसी और हॉस्पिटल में चले जाएँ, तो बेपनाह रश है हर हॉस्पिटल की एमरजेंसी में। अगर 200 बेड जाएँ तो 2,000 मरीज तकरीबन एक दिन का आ रहा है। तो हुकूमत तो चलें अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रही है, हुकूमत जो कुछ अस्पतालों के लिए सहूलतें दे रही है या अस्पताल मजीद बनने चाहिए थे पिछले 20 साल में, मगर जो लोग हैं ओवरऑल उनकी भी जो एक हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, बीमारियों के मुतल्लिक वो जानते नहीं है, ना उलमा उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि इस तरह वो सफाई रखें, इस तरह इस बीमारी से बचें। इसके ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर के आप कुछ कहें।
मैं तो मुस्तकिलन ये बात कह रहा हूँ और लोगों को इस जानिब तवज्जो दिला रहा हूँ, हमेशा तवज्जो दिलाता रहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये तवज्जो दिलाने का काम उलमा को भी करना चाहिए, असातिज़ा को भी करना चाहिए, पढ़े लिखे डॉक्टरों को भी करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पर कोई आदमी मौसर हो सकता है उसे ये काम ज़रूर करना चाहिए। बच्चों की पैदाइश में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हिफ्ज़ान सेहत में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर आप ये ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो यही कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो ये तलकीन हमें हर रोज़ हर वक्त हर मौके पर करते रहना चाहिए।
तालीम और तरबियत की भी बात हुई यार, कि जो हमारे सियासतदान हैं जब वो जलसे करते हैं तो वो अपनी बात से ज़्यादा वो अपने जो अपोजिट उनका जो कैंडिडेट होता है उसको गाली गलूच और उसके बहतान और इल्ज़ाम और ये सारा, इसके लिए ये बताइए कि क्या रियासत को कोई कानून बनाना चाहिए या उनकी तालीम और तरबियत पहले होनी चाहिए?
ये कानून से चीज़ों की इस्लाह नहीं होती, कानून का किरदार बहुत ही मामूली होता है और कानून का ज़्यादा इतलाक़ भी माशरे को ख़राब कर देता है। लोगों की तरबियत करनी चाहिए। ताहम जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, सियासतदानों के बारे में, मेरा ख्याल है उनके पास अपना कुछ कहने को है ही नहीं। जिस दिन उनके पास अपना कुछ कहने को होगा तो उनको ये फुर्सत कहाँ मिलेगी कि वो दूसरों पर तान तशनी करें। मैं तो अक्सर व बेशतर जब सियासतदानों की बातें सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि वो क्या कह रहे हैं, यानी जो कौम के मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय है, क्या इस्तदलाल है, ये मौजू ही नहीं है
उनका। अपना कोई एजेंडा भी नहीं होता उनके सामने,
यानी वो कोई एजेंडा अगर होगा भी तो वो कहीं कागजों में पड़ा हुआ होगा, वो उनके शऊर का, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनता, उनकी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनता उनके। हाँ, असल चीज़ यही है कि जो आपके मुकाबिल में है उसको गिराना है और अपने लिए इक्तदार की राह हमवार करनी है। तो ये बुनियादी तौर पर पावर पॉलिटिक्स है, यानी जिसको आप आला सियासत कहते हैं, जिसमें आप अपना एक मंशूर लेके आते हैं, आप कौम को एजुकेट करते हैं, आप छोटी से छोटी जगह पर ला लोगों के साथ बात करते हैं, फिर अपना एक जाविया नज़र उनके सामने रखते हैं, आप हाल का मुस्तकबिल का तजिया करके उनको बताते हैं, मैंने इस मुल्क में वो सियासत देखी है। यानी एक ज़माना ऐसा था कि सियासतदान इसी तरीके से लोगों से मुकालमा करते थे, वो गली गली जाते थे, वो कॉर्नर मीटिंग्स करते थे और उनमें बड़ी उम्दा गुफ्तगुएं मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। लेकिन बतदरीज अब सूरत हाल ये हो गई है कि कोई शरीफ आदमी वो गुफ्तगू सुन नहीं सकता जो एक दूसरे के बारे में हम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमारी अखलाकी तरबियत की ज़रूरत है।
जी, और कोई क्वेश्चन?
आजकल वतन अजीज़ में आजकल सादिक और अमीन के हवाले से बहुत सूरत हाल खुलकर सामने आ रही है। आम आदमी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सादिक और अमीन का डिवाइडर लाइन क्या है, और ये जो मैनिफेस्टो में हमारे साथ कौम के साथ वादा करते हैं कि हमने अपने मंशूर में ये चीज़ें शामिल कर ली हैं, जब ये कोई भी हुक्मरान आते हैं किसी भी पार्टी से, अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो आपकी तौजीह में हम सब लोगों के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए कि यह वाकईतन उन पर इतलाक होता है सादिक और अमीन का, क्योंकि वो कौम के साथ तहरीरी तौर पे अपना मैनिफेस्टो देते हैं, उसके बाद उसमें जो चीज़ें वो नहीं कर बल्कि उसके अपोजिट चले जाते हैं। तो ये सिर्फ एक फिनोमेना जो अब सादिक और अमीन का सामने आया, इस सूरत हाल से भी कौम को आगाह कीजिए कि जब वो आपसे वादा करके जाते हैं वानों में वो नहीं करते तो उन पे ये इतलाक होता है कि नहीं?
आपके सवाल के कुछ पहलू हैं, इनमें से एक तो ये है कि क्या ये जो ताबीर हमारे यहाँ हमारे आईन में इख्तियार की गई ये इख्तियार करनी चाहिए, मेरी राय है कि नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिसको आप सादिक और अमीन इंसानी तारीख में कह सकते हैं, मालूम इंसानी तारीख में, वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। हम में से हर शख्स अपने किरदार और अपने माजी और हाल का जायज़ा लेके देख ले क्या वाकयतन हम अपने आप को अपने ज़मीर के सामने खड़े होकर इस तरह सादिक और अमीन कह सकते हैं? हर आदमी कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है, गलत बयानियाँ भी करता है, अमानत में खयानत भी करता है। अच्छा, अमानत में खयानत के भी कई पहलू होते हैं, वो सिर्फ माली नहीं होती, हज़ार पहलुओं से होती है। तो इस वजह से कानून की सतह पर सिर्फ मुतय्यन जरायम के मामले में जिक्र होना चाहिए, यानी ये एक आईनी सवाल है जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। कानून की सतह पर या आईन की सतह पर आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि आप मुतय्यन जरायम बताएं, मसलन फलां जुर्म है, अगर उसका इर्तकाब किसी ने किया है तो उसकी ये सज़ा होगी, जिस तरह के आमतौर पर ताज़ीरात के मजमू में लिखा होता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा पहलू है उसको भी मलूज रखें, और वो ये कि सियासत जमहूरी उसूलों के ऊपर अगर चल रही हो तो उसमें एहतसाब की असल जगह इंतखाबात होते हैं, यानी जब एक आदमी अपने वादे पूरे नहीं करेगा तो उसकी सज़ा बहुत लेगा। कानून की सतह पर आप सिर्फ मुतय्यन जरायम पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी में देख लीजिए ना, मसलन एक आदमी कहेगा जी मैंने बड़ी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया था, मेरी ये ख्वाहिश जो थी वो बिल्कुल सादिक थी, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब मैंने इक्तदार संभाला तो ये मुश्किल पेश आ गई, ये मुश्किल पेश आ गई, ये माने हो गया, ये रुकावट पड़ गई। तो ये ऐसी लाताइल बहस को कानून की अदालत में जन्म दे देगा जिसका कोई फैसला नहीं होगा। वहां मुतय्यन जरायम पर गुफ्तगू कीजिए और आमतुन्नास में शऊर पैदा कीजिए। असल में ये अवाम का शऊर है जो जमहूरी अकदार को बेहतर तरीके से सामने लाता है, और सियासी लीडर एक लफ्ज़ मुंह से निकालते हुए भी, आप देखें मगरिब में हमने ये देखा है खासतौर पर यूरोपीय ममालिक में, कि एक लफ्ज़ मुंह से निकालते हुए भी सोचते हैं 10 मरतबा कि इसके नतायज अवाम की अदालत में भुगतने पड़ेंगे। वो अगर कभी झूठ बोल बैठते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि कौम उनके साथ क्या सलूक करेगी। तो अपनी कौम में ये शऊर पैदा करें। असल में जब हम देखते हैं ना कि कौम की इस्लाह तो बहुत मुश्किल चीज़ है, तो फिर कवानीन बनाना शुरू कर देते हैं। जिस मुल्क में बहुत ज़्यादा कवानीन बनाए जाएं उसमें मस्नूई नौइयत की फ़ज़ा पैदा हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता।
पिछले 40-50 साल की अगर तारीख को देखें, ख़ास तौर पर इस दुनिया के इस खत्ते में, तो प्रॉक्सी वॉर्स का बात रवायत चल पड़ी है, और उसकी बहुत सी वजह जो है वो हुकूमतों के अंदर, मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर है, मुख्तलिफ नज़रियात के अंदर है, और बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर ये ज़्यादा है बाकी लोगों की नस्बत, बाकी मज़ाहिब या बाकी लोगों की नस्बत, मुल्कों की नस्बत। आपका क्या ख्याल है कि ये इस्लाम जो आज से 1000 या 1500 साल पहले जो शक्ल थी, जिसके अंदर तलवार उठाने की वो शक्ल, अब मुख्तलिफ रियासतों ने खुद अपने भी प्रॉक्सीज बाकी इलाकों में या मुख्तलिफ जगहों पर खड़े किए हुए हैं, और वो अपनी लड़ाइयाँ जो रियासत नहीं लड़ सकती किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करने की शक्ल में, वो अपने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के ज़रिए वो लड़ाइयाँ कर रही हैं। मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आपके सामने कि ये हमारे मिडल ईस्ट पूरा है, हमारा मुल्क अपना है, या और हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ लोग मुल्क हैं मुस्लिम मुल्क, वो ये काम कर रहे हैं। आपको क्या ख्याल लगता है कि ये तारीख का कोई ये नेचुरल था प्रोसेस है जो होने जा रहा है इस तरह से, या ये हमने अपने ऊपर खुद एक मुसीबत मुसल्लत कर ली हुई है?
मैं तो इसको दुनिया की बदकिस्मती समझता हूँ। मेरे नज़दीक जब इस नौइयत की जंगें होने लग जाए तो फिर वही सूरत पैदा हो जाती है जिसको रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा होगा कि जिसमें ना कातिल को पता होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, ना मकतूल को पता होगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। तो कमोबेश वही तस्वीर इसमें सामने आ जाती है। जंग का इस्लाम में एक ही ज़ाब्ता है, आपको अलानिया करनी है, आपको कम्बेटेंट्स के ख़िलाफ़ करनी है, आपको मजलूम की मदद के लिए करनी है, जुल्म के इस्तेसाल के लिए करनी है, और उसको एक बाकायदा मुनज़्ज़म रियासती के तहत होना चाहिए। जब आप इस तरीके से जंग करेंगे तो जिनको आप इस्तेमाल करेंगे प्रॉक्सी के तौर पर वो इंसान है, वो कोई बिजली का स्विच नहीं है कि आपने ऑफ कर दिया आपने ऑन कर दिया, वो इंसान है। उनको आप कोई मैसेज देंगे, कोई पैगाम देंगे, कोई नज़रिया देंगे, फिर उसके बाद उनकी बंदूकों का रुख जल्द या बदेर आपकी तरफ होगा। अच्छा, जब इस तरह के गिरोह मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो ये आपस में भी एक दूसरे को मारेंगे और इससे फसाद के अंदर से फसाद
यही तो होना हो रहा है ना इस वक्त,
ये फसाद के अंदर से फसाद पैदा होता चला जाएगा। तो मेरे नज़दीक इससे मुसलमानों को भी इज्तनाब करना चाहिए, बाकी दुनिया को भी इज्तनाब करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इसके बुरे नतायज भुगतने के बावजूद ना हम इज्तनाब करने के लिए तैयार हैं, ना आलमी ताकतें इज्तनाब करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल ये था कि अफगानिस्तान के तजुर्बे के बाद अमरीका बहादुर इसकी सही नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ लीबिया में हुआ, जो कुछ शाम में हुआ, जो कुछ हो रहा है उसके बाद बड़ी सख्त मायूसी होती है। आपने सुना होगा एक मजलिस में हिलरी क्लिंटन ने एतराफ़ किया था इस बात का कि हमने ये गलत तरीका इख्तियार किया, लेकिन वही गलत तरीका फिर बाद और सियासी मसाले के तहत आपने और जगहों पर इख्तियार कर लिया। तो इससे हमेशा के लिए इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए, यानी आपको लड़ना है तो कायदे से लड़िए, क्योंकि लड़ने का मतलब यह है कि आप दूसरों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ताले आजमा लोगों के सपुर्द कर दिया जाए। खैर, मैं तो इससे आगे बढ़ता हूँ और ये कहता हूँ कि क्या इंसानियत ऐसे लड़ती रहेगी, इससे आगे बढ़िए और एक अच्छी आलमी हुकूमत कायम करने की कोशिश कीजिए। यानी ये जो कौमी रियासतें हैं इससे भी आगे कुछ दुनियाएँ हैं, उन तक बढ़ने की सही करनी चाहिए।
गांधी साहब, पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारी हुक्मरान तबके के अंदर और दीगर लोगों के अंदर जो माशी तकसीम है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो उसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ हमारी रियासत के अंदर भी हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी हैं। लेकिन जब भी पूछा जाए हुक्मरान तबके से, किसी एक मखसूस पार्टी या किसी कुछ लोगों की बात नहीं हो रही, तो उस पूरे तबके से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर बिजनेस करना भी जायज़ है और कमाना भी जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ हमें इस तरह की रिवायात भी मिलती हैं कि ज़खीरा अंदोज़ी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, या उसको कम अज़ कम उसको बड़ा गुस्से से देखा गया या उनको पसंद नहीं किया गया, और ख़ास तौर पर ज़खीरा अंदोज़ी ऐसे तबके की जो कि हुक्मरान हो, जो कि रियासत के अंदर भी हुक्मरान हो, वैसे भी समाजी तौर पर हुक्मरान हो, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जो हमारी हुक्मरान लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जायदादें हैं, क्या वो एक ऐसे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी पर्सनल वेल्थ के थ्रू कर सकते हैं जहां पे लोग रोटी से माल न्यूट्रिशन से बचे जो हैं वो मर जाते हैं? तो ये तकसीम इस्लाम इसको कैसे देखती है?
ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है कि हमारे हुक्मरान अबू बकर उमर हों, लेकिन क्या बैसीयत मजमू हमारी कौम ने भी किसी आला अखलाकी उसूल पर अपनी तरबियत की? क्या उसके अंदर हमारी माशरती और समाजी ज़िंदगी में यही तफावत और यही फ़र्क मौजूद नहीं है? अभी तक सूरत हाल ये है कि मैं कवानीन देख रहा था, अब एक कौमी असम्बली पर खर्च करने के लिए 5 करोड़ की रकम मुकर्रर की गई, अगर मेरी इतला गलत नहीं है तो ये रकम मुकर्रर की गई है। ये 5 करोड़ आपकी जेब में है, मेरी जेब में है, तो फिर वही लोग आएंगे ना जिनके पास 5 करोड़ रुपया होगा। आप अपने इंतखाबी निज़ाम को अगर रुपये से ऊपर उठाना चाहते हैं तो सर जोड़कर उसकी इसलाह कीजिए। ये बताइए सियासी पार्टियां कैसे होनी चाहिए, ये बताइए कि टिकट किनको मिलने चाहिए, ये बताइए कि उसके अखलाकी उसूल क्या हैं जिनको लाजमन महूज रखना चाहिए, और कम्पेन का या मुहिम का ऐसा तरीका डिवाइस कीजिए। इसके लिए भी इंसान अगर सोचे तो बहुत से रास्ते निकल आते हैं जिसमें कम से कम रुपया खर्च हो। अच्छा, अगर खर्च होना ही है तो उसके लिए भी कोई निज़ाम बना दीजिए जो रियासत के अहतमाम में हो जाए। ये कौन सी चीज़ है जिसकी हमने इस्लाह करने की कोशिश की? इस वजह से ये नहीं हो सकता कि एक जगह से आप एक फतवा किसी के ऊपर सादिर कर दें और उसके बाद पूरा निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। ये जिस तरह के उज़र लंग आपने बयान फरमाए हैं जो हुक्मरान तबके के लोग या सियासतदान पेश करते हैं, हर आदमी पेश कर रहा है। यानी आप मेरे साथ चलिए तो मैं आपको बताऊंगा कि हर कारोबारी आदमी टैक्स बचाने के मामले में यही उज़र पेश कर रहा है, चोर बाजारी के मामले में यही उज़र पेश कर रहा है, रुपये को बैरून मुल्क मुंतकिल करने के बारे में यही उज़र पेश कर रहा है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बैसियत मजमू तो कौम एक दूसरे रास्ते पर जा रही हो और हुक्मरान आसमान से जिबरील अमीन बन के आ जाए, ऐसे ही होगा। इंतखाबी इस्लाहात कीजिए, सियासी पार्टियों को मुनज़्ज़म होने दीजिए। सियासी अमल मुस्ताकम होता है तो इससे पार्टियां मजबूत होती हैं, उनके अंदर सियासी कल्चर पैदा होता है, उनके अंदर ख़ानदानी कुव्वतें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती हैं। ये अमल हम होने ही नहीं देते। जब नहीं होने देते तो फिर हमारे मुकद्दर में यही लिखा हुआ है कि वक्तन फ़क्तन इसी तरह के लोग हमको मिलते रहे। और माजरत के साथ इस वक्त अगर आप निगाह उठा के देखें तो एक आदमी जो सियासत करना चाहता है वो अगर मुल्क में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों से राबता करने के लिए सफ़र भी करना चाहे तो ज़रा बजट बना के बता दीजिए कि अब मैं और आप मुतहम्मिल हो सकते हैं उसके। تو ان حقائق کو سامنے رکھ کر قوانین کو بہتر بنائیے. آخری بات یہی ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے بنیادی کردار روپیہ ہی ادا کرتا رہا. آپ اس کے کردار کو محدود کر سکتے ہیں, منظم کر سکتے ہیں, کم ضرر رساں بنا سکتے ہیں, خاتمہ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اپنی روزی کمانے کے لیے 8-10 گھنٹے روزانہ محنت کرنی ہے تو میں سیاست کے لیے وقت کہاں سے نکالوں؟ کیا وجہ ہے کہ جاگیردار پہلے سیاست کرتا تھا اس لیے کہ فارغ ہوتا تھا؟ کیا سبب ہے کہ بہت سے لوگوں کو دلی میں اور لکھنؤ میں مکان اور جائیدادیں دے کے فارغ کر دیا جاتا تھا کہ سیاست فرمائیں؟ اس لیے کہ پھر ان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی تھیں, یا سیاست کریں گے یا شطرنج کی بازی لگا کے بیٹھیں گے. تو فراغت کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا؟ اب کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیجئے کہ جس میں ہمارے سیاسی نظام کا یہ عملی پہلو درست ہو, اس سے آپ وہ چیز اچیو کریں گے. یہ محض میرے کوئی فتویٰ دے دینے سے اچیو نہیں ہو سکتا.
ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے تمام شرکا کا ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. یہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے متفرق سوالات آپ کے سامنے رکھے, اور امید ہے آپ کو یہ سوالات کا یہ جو پروگرام تھا, یہ نشست تھی, پسند آئی ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں مزید کچھ سوالات آئے ہوں اس ڈسکشن کو سننے کے بعد. یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv, اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.